मुफस्सिर कुरान किराती साहब फरमाते हैं, वाकया उन्होंने नकल किया बहुत ही मज़ेदार, साहब की खिदमत में हम पेश करना चाहेंगे। वो ये है कि उन्होंने कहा कि हम जहाज़ में बैठे, थोड़ी देर के बाद सबको जहाज़ से उतार दिया गया और जब पूछा कि हुआ क्या है तो उन्होंने कहा कि जो एयर होस्टेस थी, जो स्टीवर्ड था, उसने कहा कि कुछ चूहे चले गए हैं जहाज़ में और बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा वो कैसे, चूहे कैसे साबित हो सकते हैं, इतनी बड़ी चीज़ के लिए मुख्तसर सा चूहा कैसे ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि बहुत पतले तार होते हैं हवाई जहाज़ के और अगर उसको कहीं काट लिया और वो रابطہ कट गया कंट्रोल टावर और पायलट का, तो हो सकता है जहाज़ गिर जाए और जो अच्छे खासे लोग मारे जाएं और ख़त्म हो जाए बिल्कुल ये रابطہ सिरे से। तो उन्होंने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जब एक छोटा सा चूहा इतने बड़े जहाज़ को गिरा सकता है तो हमारे छोटे छोटे आमाल कैसे हमारे, यानी असल जो कंट्रोल टावर है और उससे हमारा रابطہ कैसे ख़त्म कर सकता है। तो हम लोगों को देखना चाहिए क्या हम लोगों का गुनाह, हम लोगों के जो शहवत होती है, हम लोगों के जो मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयां होती हैं, वो कहीं गालिब ना आ जाए हमारे और ख़ुदा के रابطے के बीच, कहीं इस किस्म के चूहे हमारे और ख़ुदा के रابطے को काट ना दें। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही अज़ीज़ शख्सियत मौजूद है हमारे पास।
मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने अज़ीज़ शख्सियत का लकब जो है मुझे दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप लोग खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम हसन आपकी खिदमत में लेके आ गया, मैं भी आपकी खिदमत में लेके आ गया।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। नाजरीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं खाने पीने के हवाले से। आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत मुफीद चीज़ें आप लोगों के लिए, इस दुनिया वाली और उस दुनिया वाली, यानी उस दुनिया से मतलब थोड़े इस दुनिया से बाहर, यानी खला में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं खाने पीने के लिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अहमियत उसकी इस लिहाज से है कि सिर्फ वो खाने पीने की चीज़ नहीं है बल्कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। और मैं ये बताते चलूँ कि आज जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, डॉक्टर अवैस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। और जो पिछला
मुलाकात हुई मेरी
जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। और जो पिछला हमारा जो हफ्ते का मौजूद चल रहा था वो चल रहा था कि आलूदा पानी, गंदा पानी जो उसका इस्तेमाल है उसको साफ़ कैसे करना है, बहरहाल उसकी क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, उसी मौजू को जो है हसन हम आगे चलाएंगे। और उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर अतियन निषाद जो है दिल्ली
स्टूडियो हम लोगों के साथ होंगी। तो हमारा प्रोग्राम आज देखिएगा, बहुत मुफीद है इस लिहाज से कि हर चीज़ जो है खाने पीने के बारे में होगी, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालेंगे। और ये बहुत इस लिहाज से अहम है कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत छोटी चीज़ों से वाबस्ता होती है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम में शुरू में कहा कि हो सकता है एक बारीक सा तार, एक बहुत ही पतला सा तार पूरे हम लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करके रख दे, एक रابطے को काट दे या एक रابطہ बरकरार कर दे। तो इसको सही तौर से रابطہ बरकरार रखने के लिए और जो मेंटेनेंस होता है बदन का भी और रूह का भी, उसको बाकी रखने के लिए आज का प्रोग्राम देखिएगा। बहुत मज़ेदार चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर। तो खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। बहुत ही कैसे मज़ेदार सी कहानी आप लोगों ने सुनी और इसमें ख़ास चीज़ ये है कि हम लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई बड़ी मिसाल दी जाए हम लोगों को, तब जाके हम लोग कोई चीज़ सीखें, बल्कि छोटी मिसालों से भी, छोटी दास्तान इस तरीके जो होती हैं उससे भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखने को हम लोगों को मिल सकता है। एजाज हुसैन साहब ने चंद मिनट पहले हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा सा कमेंट भेजा है कि उन्होंने कहा है कि हुकूमतें जो हैं जुल्म के साथ नहीं रह सकती, यानी कहा जाता है कुफ्र के साथ रह सकती हैं बल्कि जुल्म के साथ नहीं रह सकती। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है और उन्होंने लिखा है कि जिस माशरे में हुक्मरानों और अवामी रहनुमाओं में इंसानियत और दहशतगर्दी की पहचान ख़त्म हो जाए वहाँ जुल्म जन्म लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन साहब। और इसी तरह सैयद कर्रार हाशमी साहब का, जिन्होंने कश्मीर से हम लोगों के लिए कमेंट भेजा है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे रابطہ बरकरार करें हाशमी साहब। और अभी फ़ौरन चलते हैं, डॉक्टर उवैस रज़ा इस वक्त स्टूडियो में हम लोगों के साथ मौजूद हैं। आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, खुर्रम और डॉक्टर उवैस रज़ा की गुफ्तगू से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया हसन। और जी बिल्कुल, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम लोग गुफ्तगू सेगमेंट में पहुँच चुके हैं, डॉक्टर अवैस राजा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पानी के बारे में हमारी बात हो रही है, बड़ा ही अहम मौजू है, बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियाँ। और डॉक्टर साहब ने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि बहुत सी अमवात हैं जो गंदा पानी पीने की वजह से जो है बाहर दिखने में आती हैं, सामने आती हैं। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि पानी को कैसे साफ़ किया जाए, मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ तरीके जो है। डॉक्टर साहब ने पिछले प्रोग्राम में एक तरीका बताया, डॉक्टर साहब ने दो तरीके बताए थे हमें। अब जो है और क्या तरीके हैं जिसकी जिसके मदद से हम लोग जो है पानी को साफ़ कर सकते हैं, ये डॉक्टर अवैस जो है आज हमें इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में बताएंगे। सलाम अर्ज़ करो डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।
वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मौजू को हम जारी रखेंगे, बहुत अहम मौजू है और गुफ्तगू को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह
बहुत
आज।
शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको खुद पता है कि पानी की जो साफ़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ बहरहाल जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि पानी को उबाला जाता
जी
है,
जी
लेकिन वो जैसे ही उबलना शुरू होता है उसे बंद कर
बंद
दिया
कर
जाता
देते हैं
है, या इस तरह की मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, तो आप अगर उन पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें।
जी। पिछले प्रोग्राम में जैसे एक बहुत अहम नुक्ता ये था कि उबालना बहुत अच्छा तरीका है
ठीक है,
और बहुत मुफीद है, और इससे बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं,
सही है
जरासीम जो हमें नज़र नहीं आ सकते,
जी।
जो बेसिकली कीमियाई शक्ल के होते हैं
हाँ
उनसे भी बचा जा सकता है, और जो फिज़िकल होते हैं जैसे मसलन कोई पत्थर के ज़र्रात हैं, कोई मिट्टी के ज़र्रात हैं, उनसे भी हम बचा जा सकते हैं।
ठीक है
क्योंकि जब हम पानी को उबालने रखते हैं तो कुछ मुद्दत के लिए पानी बर्तन में खड़ा रहता है,
ठीक
फिर
है
जब पानी ठंडा होने के लिए रखते हैं तो उस वक्त भी पानी खड़ा रहता है,
ठीक
और
है
बहुत सारे ऐसे ज़र्रात हैं जो कि नीचे तह में जम जाते हैं, नीचे
सही
बैठ
है
जाते हैं।
जी, बिल्कुल बैठ जाते हैं सही।
तो एक तो तरीका ये है कि अगर मसलन किसी जगह पे पानी उबालने के मौके मौजूद ना हो,
सही है
मसलन बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं या ऐसे घराने हैं जिनके पास एक ख़ास किस्म की गैस नहीं आ सकती कि वो चूल्हा बहुत देर तक जला रखें
बिल्कुल
जला सकें, या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते या चारकोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते कुछ अपनी माशी हालात की वजह से, तो उनके लिए बहुत मुफीद तरीका है कि पानी को कुएं से या लाइन के जिस जरिए से भी आ रहा है
ठीक है
उसको तकरीबन 24 घंटे, 12 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे, 48 घंटे तक जमा करके रखा जाए,
ठीक है
यानी उसको ढाँक के, प्रॉपर ढाँक के रखे, और उसको इतना मुद्दत दी जाए कि जितने भी ज़र्रात हैं अगर मसलन कीमियाई मसलन जैसे हम बैक्टीरिया वायरस कहते हैं अगर उससे नहीं बचा जा सकता तो कम से कम पत्थर है या मिट्टी के जो ज़र्रात हैं या दूसरे इस तरह से जो बैठ सकते हैं जिनका
ठीक
वज़न हो
है।
सकता है जो बैठ जाए नीचे तह में,
अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो
कम से
कम
कम
कम से कम जो है वो ये काम जरूर कर सकते हैं, उसको रख दें
उसको रख दें
खड़ा रहे वो,
खड़ा रहे
ताकि
मसलन,
उसके जो
हाँ
जर्रात हैं वो बैठ जाए।
बैठ
अच्छा,
जाए, और जब
जबरदस्त ये
पानी
तो
जब इस्तेमाल करने के लिए हो तो इस बात का ख्याल रखें कि जब पानी दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता
आराम से।
तय बहते पानी
अच्छा
को जारी
ठीक,
किया जाए।
सही, ये तो डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आपने रास्ता
एक तो
बताया
बिल्कुल ये कि जहाँ इसमें ना पैसा कोई खर्च हो रहा है ना
जी।
कोई इसमें उनको किसी किस्म की फ्यूल की ज़रूरत है,
ठीक है
बस ये पानी आप जमा करें खड़ा कर दें।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने पिछले प्रोग्राम में ये भी बताया था कि इसी तरह पानी को जो है डब्बों में या किसी बोतल में जो जो है बाहर ट्रांसपेरेंट हो सूरज की
धूप के,
रोशनी के
जी
नीचे, वो
जी
भी एक आपने तरीका बताया था।
उसके बेसिकली उससे भी ये तरीका यानी पानी को सिर्फ खड़ा रखने से बेहतर तरीका ये है
अच्छा
और काफ़ी मुफीद है। इसके लिए थोड़ी सी इस में ज़रूरी है कि प्लास्टिक का बोतल इस्तेमाल की जानी चाहिए।
ठीक है
अब इसमें उमूमन जब भी ये मशवरा दिया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है और सही कॉन्सेप्ट है कि प्लास्टिक की बोतलों में कुछ अगर धूप में रखा जाए तो उसमें से ऐसी ज़र्रात मिक्स हो जाते हैं पानी में जो कि
ठीक,
बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं,
अच्छा सही, यानी
तो इसके लिए
खुद
खास,
प्लास्टिक की बोतल की वजह से।
हाँ
ठीक है
अब इसमें खास किस्म की प्लास्टिक बोतल आती है जिसे साइंटिफिकली हम तो उसके पेट बॉटल्स कहते हैं,
ठीक है सही
अगर तो वो मुयस्सर है तो आप उसको इस्तेमाल करें,
ठीक है
अगर वो आपके इलाके में मुयस्सर ना हो तो आप बेहतर है कि दूसरा कोई तरीका इस्तेमाल करें उसको, ये
अच्छा
वाला तरीके में पानी को
सही
ना
नहीं
रखें।
जी, बिल्कुल। ये प्लास्टिक की बॉटल्स के बारे में अक्सर जो है बहस चल रही होती
चल रही
है,
होती
और
है,
कुछ
हाँ
वेबसाइट्स वगैरह पे भी मैंने भी पढ़ा था। डॉक्टर साहब गुफ्तगू को जारी रखेंगे यहाँ
बिल्कुल
पर, हमें छोटा सा जो है वक्फा लेना है मेरे ख्याल में, और देखते हैं हसन जो है हमें वक्फे में कहाँ पर लेके जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। बहरहाल हम लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तैयार किए हैं उनमें से चल के एक देखते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नाज़रीन और गुफ्तगू हम लोगों की जारी रहेगी। आज से अगर 10 साल पहले होता ना ये सारे वसाइल जो हैं बहुत ही मुश्किल ही से मिलते आपको राबता बरकरार करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के 10 साल बाद है आज। تو اس میں ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ اگر آپ ہم سے رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے دوران تو فیس بک بہترین راستہ ہے, سستا بھی پڑے گا آپ کو, الگ سے آپ کے پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے, ویسے پیسے اس لحاظ سے بھی آپ کے زیادہ خرچ نہیں ہوں گے کہ آپ اگر ہم سے رابطہ کریں گے ٹیلی فون کے ذریعے تو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ پھر سے یعنی آپ کی لائن کاٹ کے آپ سے رابطہ کریں گے فون نمبر لے کر, تو اس ذریعے بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں پروگرام کے دوران بھی. اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا جو ہم لوگوں کے فیس بک کے پیج پر آ کے لائک کرتے ہیں, مختلف چیزیں شیئر کرتے ہیں, یا بہرحال لائک کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے, ایک کلک کیا لائک ہوا, اب آپ کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے لیکن لائک ضرور کریے کیونکہ تاکہ ہم لوگوں کا یہاں پہ تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہم لوگوں کو ڈھارس ہو کے کوئی کچھ لوگ دیکھ تو رہے ہیں ہم لوگوں کا پروگرام. تو چلتے ہیں ابھی ڈاکٹر اویس رضا اور خرم کے پاس اور پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس کے بعد کئی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
بہت شکریہ حسن, اور بار بار بات ہماری چل رہی ہے پانی کو کیسے صاف کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور میں نے پوچھنی تھی یہاں پر کہ پانی کو جب ابال لیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس کے بعد چھانا جائے,
جی جی
یہ ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟
بالکل, بیسیکلی یہ طریقہ جو ہمیں سائنٹیفک طریقوں سے ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے, یہ جب ہم پانی کو کی صفائی کے ذریعے کے بارے میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب طریقے الگ الگ ہیں.
صحیح,
مثلا پانی کا ابالنا ایک طریقہ ہے, چھاننا ایک طریقہ ہے, پانی کو کھڑا رکھنا ایک طریقہ ہے.
صحیح,
اب بہتر طریقے جیسے ہم لوگ گھر میں اور عموماً بہت سارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ نے باہر سے سیکھا ہوا تھا, وہی ہم بچپن سے بتایا تھا کہ پانی کو پہلے ابال لیں اس کے بعد کھڑا رکھیں,
ٹھیک ہے,
اور جب برتن میں جب پینے کے برتن میں اس کو مثلا جگ ہے یا کوئی گلاس ہے اس کے لیے نکالنا ہو تو آہستہ آہستہ چھان کے نکال لیں.
ٹھیک ہے, صحیح ہے.
تو مثلا اس میں تین طریقوں کے فائدے ہمیں مل سکتے ہیں.
ہاں صحیح,
پہلی پہلے تو آپ نے پانی کو کھڑا رکھا ہے, پھر ابالنے کے لیے رکھا, پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا, پھر جب چھان رہے ہیں تو پھر ایک اور فائدہ ہو سکے.
ٹھیک ہے,
تو مختلف طریقوں سے مختلف جو جراثیم ہیں کچھ فزیکل ذرات ہیں جو جیسے پتھر ہے یا مٹی ہے ان سے بچا جا سکتا ہے. چھاننے کا یہ ہے کہ ململ کا کپڑا عموماً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کا استعمال سب سے بہتر ہے جو عموماً ہر گھر میں ہی موجود ہے.
صحیح,
اگر تو آپ کو مارکیٹ میں یہ چیز اویلیبل ہو جائے تو کچھ کاغذ آتے ہیں خاص طور پہ فلٹر پیپر ہوتا ہے,
ہاں فلٹر پیپر ہے, ٹھیک ہے,
اس کا استعمال سب سے مفید ہے,
وہ بہت اچھا ہے. صحیح, ٹھیک,
اگر اس کا استعمال کریں تو ایک تو یہ کہ جو فزیکل جو ذرات ہیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اور کسی حد تک جراثیم سے بھی بچا جا سکتا ہے.
اچھا,
کسی حد تک, کیونکہ ہم جب جراثیم کی جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت اقسام کے جراثیم ہوتے ہیں, کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے جیسے بیکٹیریا یا وائرس ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ اس طریقے سے رکتے بھی نہیں ہیں, یعنی چھننے سے یا ابالنے سے اتنی جلدی رکتے بھی نہیں, اس کا خاص ٹیمپریچر پہ لے کے جانا پڑتا ہے.
صحیح,
تو اس کے لیے پھر دوسرے طریقے موجود ہیں, البتہ چھاننے کی اپنی افادیت ہے تو اس کا بالکل ضروری خیال رکھنا چاہیے.
صحیح, اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ منرل واٹر جو ہے اس کا بہت کہا جاتا ہے استعمال کیا جائے, ایک جو چیز یہاں پر میں واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے بھی, وہ یہ کہ آیا منرل واٹر, کہتے ہیں کہ منرل واٹر میں منرلز آپ کے پورے ہوتے ہیں, اور مثال کے طور پر مجھے جو ہے میں کہتا ہوں جی مجھے منرل کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایک صاف پانی کی ضرورت ہے, تو کیا منرل واٹر اسی طرح صاف کیا ہوا پانی ہوتا ہے یا صرف نہیں اس میں منرل ڈال دیے گئے یا کسی چشمے سے اس کو بھر لیا؟
اس میں جو دیکھا جانا چاہیے وہ یہ تھا کہ اس میں باقاعدہ اس کا پورا پانی کا پروسیس ہوتا ہے صفائی کا, جس کا ڈفرینٹ طریقے سے نکالا جاتا ہے, یعنی فلٹریشن بھی ہوتی ہے اس میں, اس میں بوائلنگ بھی ہوتی ہے, اس میں بہت سارے اسٹیپس اس میں موجود ہیں.
صحیح ہے,
پانی کو صرف صاف کرنے کے لیے.
صحیح,
اب یہ تو صفائی کی حد تک تو کافی ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن کیونکہ بیسکلی جو پانی کا یعنی جو فلٹر واٹر ہم کے منرل واٹر کا جو کانسیپٹ ہے اور جو چیز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, یہ بیسکلی اس علاقوں کے لیے آئی ہوئی تھی کہ جہاں پہ جن کے پانی میں منرلس کی کمی ہو جاتی ہے,
منرلس کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے,
کیونکہ کچھ شمالی علاقے ہیں وہاں پہ پانی الگ نوعیت کا ہوتا ہے, جنوب میں پانی الگ نوعیت کا ہوتا ہے, کہیں نمک زیادہ ہے تو کہیں نمک کم ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ سب مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے اقسام کے پانی موجود ہے. اب کیونکہ یہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو ہر شخص سوچتا ہے کہ زیادہ مفید ہے اس کو استعمال کیا,
ٹھیک ہے بالکل,
سو اس کا استعمال کرنا نامفید نہیں ہے, کوئی خطرناک نہیں ہے, مثلا یہ ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ اگر جس کو ضرورت نہ ہو وہ بھی استعمال کر لے تو اس کو نقصان ہو جائے,
ٹھیک ہے,
یہ ایک عام سی چیز ہے, اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, اس کا کوئی ایز سچ سائڈ افیکٹ نہیں ہے,
لیکن اصل مقصد جو تھا اس کا یہی تھا کہ جی جہاں پر منرل کچھ علاقوں میں کم یا زیادہ ہیں ان کو بیلنس کر سکتے ہیں,
ان کو بیلنس کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک, ڈاکٹر صاحب گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ, ہمیں یہاں پر ایک دوبارہ چھوٹا سا وقفہ لینا ہے اور وقفے میں جو ہے میرے خیال میں حسن جو ہے ہمیں کوئی کلپ وغیرہ دکھانے کے چکر میں, ہاں جی چلو.
आप लोग देखिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। मेरा लेक ईरान में तैयार शुदा एक क्लिप है
उस्ताद नूरी की आवाज में, मेरे ख्याल में।
बिल्कुल
बिल्कुल,
मैं उसके बाद बताने जा रहा था।
तो
चलते हैं, वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस क्लिप की अहमियत इस लिहाज से है कि ईरान के जो छोटी जगह हैं, उनकी तर्ज ज़िंदगी से आप काफ़ी हद तक आप यानी शिनाख्त हासिल कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे खानाबदोश कैसे रहते हैं। या यहाँ पे एक तो मैं बताता चलूँ, जैसे मसलन हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता है कि कस्बे भी जो होते हैं वो अच्छे खासे बड़े होते हैं, यहाँ पे नहीं है। कस्बे तो बहुत, अगर हो गया 30-35 घर हैं मुख्तलिफ इलाकों में, बियाबानी इलाकों में कम होता है। और जहाँ पर मिसाल के तौर पर कैस्पियन सी जो शुमाल में वाक़ है, वहाँ पर आप जाइए तो बहुत ही खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे बिल्कुल हरा भरा हर तरफ रहता है। तो शालीजार भी, यानी जो जहाँ पे कह सकते हैं चावल का पूरा खेती बाड़ी उसकी होती है, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह का मंजर देखने को मिलेगा। बहुत ही इस लिहाज से बहुत ही मज़ेदार सी क्लिप थी। सैयद करार हाशमी साहब ने पूछा है कि क्या हम लोग को ठंडे पानी के साथ दवा लेनी चाहिए, कोई टैबलेट लेनी चाहिए, कि कहा जाता है कि नहीं लें, तो इसके बारे में उन्होंने पूछा है कि क्या ये सही है।
बहुत शुक्रिया हसन जी। अच्छा, ये करार साहब का सवाल जो है, उन्होंने कहा है कि ठंडे, बहुत ठंडे पानी से, बताए आप क्या कहेंगे इसके बारे में।
इसमें इसकी यानी कोई मुस्बत और मनफी में कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह से हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि वो अपने मरीज़ को या आवाम को जो भी मशवरा दे उसकी बुनियाद कोई साइंटिफिक हो नहीं चाहिए। तो जहाँ तक हमारा मुताला है उसमें तो इस तरह से कोई भी जिक्र नहीं आया कि इसको बहुत ठंडे पानी में अगर लिया जाए तो कोई नुकसान हो जाएगा,
ठीक है,
या बहुत गर्म पानी में लिया जाए तो कोई फ़ायदा मिल जाएगा,
ठीक है।
अलबत्ता जिस तरह से आपकी आदत है और जिस तरह से आपको मुफीद लगता है पानी, जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा के दौरान या आम पीने के लिए,
सही,
उससे ले लिया जाए।
ना, ये नहीं है कि उसमें बर्फ डाल के स्पेशली दवाई ले रहे हैं।
हाँ, यानी कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसके लिए आपको कोई एक्सट्रीम ठंडा पानी की जरूरत है कि आपने बिल्कुल यख बर्फ से जमा हुआ पानी आपने पी लिया, उससे कुछ ज्यादा टेबलेट से ज्यादा उस पानी की वजह से आपको मुफीद ज्यादा अफादियत
होगा,
ऐसा कुछ नहीं है।
नॉर्मल जो नॉर्मल जैसी आदत है, जो आप पानी पीते हैं उसी को पिए। और जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है डॉक्टर साहब, ये कुछ कैप्सूल वगैरह होते हैं जो कहते हैं कि बहुत अगर गर्म पानी से लें तो वो खुल जाते हैं मुंह के अंदर, या वो उनका तो
वो जो कैप्सूल है उसकी जो एक खास उसकी मसलन उसका जो काम करने का दौरानिया होता है
जी,
वो हमें अपनी अगली आंतों के लिए मुयसर करना पड़ता
है। सही है,
ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा मसलन उसको ये भी कहा जाता है कि आप चबाए ना।
हाँ जी बिल्कुल, चबाए ना,
उससे उसके अंदर का जो मवाद है वो आपके मुंह में ही आके जज्ब हो जाएगा। जहाँ पे हमें एक्सेस की जरूरत होती है कि वो वहाँ पे जाके काम करे, वो वहाँ तक दवाई पहुँचती है
करने से। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और क्या तरीके हैं हमारे पास पानी साफ करने के?
इसके बाद जो हम एक फिजिकल तरीका, जिससे हम मसलन एक तो पानी को खड़ा रखना है, पानी को छानना है,
ठीक है,
कुछ केमिकल्स आते हैं, बल्कि हम पहले ही फिजिकल पे ख़त्म कर लें अपनी गुफ्तगू
जी,
कि एक तो जो उमूमन घरों में तरीका होता है कि आपने एक बर्तन में पानी को रखा हुआ है, उसको छाना, और एक ही कपड़े की लहर है या एक ही फ़िल्टर पेपर आपने इस्तेमाल किया। कुछ अफ्रीकन ममालिक में इस पर रिसर्च हुई है कि उन्होंने कुछ एक तरीका ईजाद किया है कि उसमें बहुत सारे ड्रम के बीच में बहुत सारी लेयर्स रखी हुई हैं।
अच्छा,
मतलब 3 डब्बे रखे हुए पानी के,
ठीक है,
और हर डब्बे के बाद जब दूसरा डब्बा शुरू होता है तो एक फिल्टर लेयर है,
ठीक है, सही।
अब ये फिल्टर एक अलग अलग, मसलन एक पेपर का फिल्टर बनता है,
ठीक है,
एक इसमें मिट्टी का फिल्टर बनता है।
अच्छा,
मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर इसमें लगाए जा सकते हैं।
सही है, बड़ा दिलचस्प तरीका है ये बिल्कुल तकरीबन उसी तरह हो गया डॉक्टर साहब जैसे जो खुद फिल्टर जो मिलते हैं
जो मार्केट में कमर्शियली हमारे यहाँ शहरों में जो मिल जाते हैं, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट इन्होंने
तकरीबन यही कॉन्सेप्ट, एक में कागज लगा होता है फिल्टर, दूसरे में जो है पत्थर शत्थर होते हैं, इस तरह की चीजें से,
ठीक, ये उसी का एक मॉडिफिकेशन है,
ठीक है,
क्योंकि लेकिन आप जैसे बाजार में जो कमर्शियल जो मिलते हैं फिल्टर वो महंगे होते हैं,
बिल्कुल सही,
उनके लिए फिर सफाई की जरूरत होती है,
सही है,
वो मुफीद तो हैं, उनकी भी अफादियत है
जी,
लेकिन माशी तौर पे हम आम लोगों को ये मशवरा नहीं दे सकते कि वो आप उसका इस्तेमाल करें।
सही, ये बड़ा दिलचस्प तरीका है कि मसलन जो है आप वही एक फिल्टर पेपर बड़े साइज का ले लें और एक लेयर जो एक बार का खर्चा है छोटा सा और बस वो बना के और उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल करते रहें। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है हमें दोबारा जाना है हसन के पास और देखते हैं हसन जो है आज क्या मजेदार किस्म की बातें हमारे लेके आए।
उसमें खाने पीने के बारे में है। बहरहाल आपने पीने के बारे में बात कर ली,
सही
हम
है,
खाने के बारे
खाने
में
के
बात
बारे में बात
करेंगे।
करें, चलें ठीक
ऐसे
है।
वो इसको यानी मुस्बत अंदाज में आप लोग देखिए इस बात को, और वो खाना खिलाना जो सियासी सतूह पे होता है हम उसकी बात नहीं करेंगे, बल्कि जो आम हालात में हम लोग खाते हैं ताकि एनर्जी हासिल हो उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ा अलमिया होता है जो मुख्तलिफ किस्म के जो खला में जो लोग जाते हैं, मैं अपने साथियों से दरख्वास्त करूंगा, मेरे ख्याल में इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसको बताएं। बहरहाल मैं उसको आपको हम लोग बताऊंगा कि एस्ट्रोनट्स जो होते हैं जो खला में लोग जाते हैं उनके साथ मसला ये पेश आता है कि बहुत ज़्यादा वो लोग मुख्तलिफ किस्म के जो खाने होते हैं उससे महरूम रहते हैं और लंबे अरसे के लिए जाते हैं। तो आम मुख्तलिफ ट्यूब्स होते हैं उसमें खाना उनका होता है, या मुख्तलिफ ट्यूनाज होते हैं वो उनको लेना पड़ता है, और मसला ये होता है कि वो सही तौर से उनको खा नहीं सकते, और थोड़े दिन के अंदर उनके मैदा जो है उनका वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में पता नहीं ठीक हुआ है या नहीं, नहीं ठीक नहीं हो रहा है बिल्कुल, ये जैम हो गया है, हम साथियों को पता चल जाए। और ये मैं बताता चलूं कि इन लोगों का ये होता है कि खाने को अगर सही तौर से अगर उनके उन तक नहीं पहुंचा तो वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो सकते हैं। ऐसे ही वो काफ़ी हद तक जद में होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के, क्योंकि वो खला में होते हैं और कोई प्रेशर नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें करनी होती हैं, लेकिन अगर सही तौर से उनको खाना खाना है तो बेहतरीन चीज़ ये देखी गई कि एक 3D प्रिंटर इस्तेमाल किया जाए जो खाना प्रिंट कर सके। एक साहब हैं अनजान कॉन्ट्रैक्टर उनका नाम है, बहरहाल ये इन्होंने एक काम किया कि टेक्सास यूनिवर्सिटी के थे, $1,25,000 का उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया और इनाम के तौर पर आखिर में उन्हीं को दे दिया गया कि उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि मुख्तलिफ उसमें चर्बी, आपके नशास्ता, गोश्त के मुख्तलिफ यानी क्रीम टाइप की मुख्तलिफ चीज़ें, और ये सब जब इकट्ठा हो गई तो उन्होंने प्रिंट ले लिया और खाने के तौर पर उन्होंने पेश कर दिया और उसमें $125,000 उनको मिल गए। और ये चीज़ बताती है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत है इसकी कि एस्ट्रोनॉट्स हम लोगों के मुख्तलिफ कैसे खाने खा सकते हैं या ऐसी जगहों पर जहाँ पे खाना पहुँचाने की यानी प्रॉब्लम हो। तो चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक ये LCD भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, खाने पीने के बारे में और चीज़ें जो हम आपको बताएंगे वो एक है लीमू के छिलके के बारे में। मुख्तलिफ किस्म के लीमू होते हैं, जब वो मीठा हो, कह सकते हैं कि कीनू जिसे कहा जाता है, हम लोग आराम से छीलते हैं और फेंक देते हैं। वैसे बाज़ जो यानी सलीके वाले लोग होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मरमलेड्स या मुरब्बे उसके बनाते हैं, लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि हम लोग उसको आराम से फेंक देते हैं इसके बगैर, यानी उसको बगैर जाने हुए कि इसमें किस हद तक चीज़ें खुदा ने इसमें इसके छिलके में रखी हुई हैं। अगर ऊपर से शुरू किया जाए यानी यहाँ से शुरू किया जाए तो सबसे मुफीद चीज़ जो आप इसके छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इसके बारे में कि आप अपने यानी आपकी जो जिल्द है उसके ऊपर मुख्तलिफ एक्नेज होते हैं या काले धब्बे होते हैं वो दूर करने के लिए बहुत बेहतर होता है। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए अहम है वो ये है कि जो मुख्तलिफ किस्म के दाग, आपके पुराने दाग भी जो हैं अगर चेहरे पर, वो दूर करने के लिए यानी जितने आप समझिए कि सिट्रस फल होते हैं वो बहुत मुफीद होती है, उसकी कह सकते हैं उसका छिलका बहुत ज़्यादा मुफीद होता है आपकी स्किन के लिए। मुंह के अंदर की अगर बात करें तो आपके यानी पूरे दांत और ये सब उनकी सफाई के लिए बेहतरीन चीज़ है, यानी आम हालात में अगर आप इस्तेमाल करें, सिर्फ खाएं उसको या चाय के साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो देखी जा रही है वो ये है कि आपके जो मुख्तलिफ जो बदन के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, चाहे वो दिल हो चाहे वो आपका निज़ाम इन्हज़ाम हो, उसको ताकत पहुंचाने के लिए लीमू या इस तरह के मुख्तलिफ फलों का छिलका बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और इसको आप इस्तेमाल करने के लिए ये काम कर सकते हैं कि मुख्तलिफ चाय के साथ इस्तेमाल करें या उसको रंदा करें और शक्कर डाल के थोड़ा इस्तेमाल कर लें, चिप्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको थोड़ा खुश्क करके, और उसका ख़ास अपना मज़ा होता है, वो सफ़ेद वाला हिस्सा निकाल कर बाकी जो रह जाता है यानी खुद जो छिलका रह जाता है उसको इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद है। दिल के दौरों को ठीक कर सकता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और हत्ता बताया जाता है कि आम जो यानी हो सकता है कि बीमारी जो करख्ती से आ जाती है सारे पट्ठों में और मसल्स में, वो उसको भी दूर कर सकता है। तो ये बहुत ही मुख्तसर हिस्से यानी थे इसके फ़वाद के। चलते हैं खुर्रम के पास, इंशाल्लाह अगर वक्त मिला और ज़िंदगी रही आपकी खिदमत में और चीज़ें पेश करेंगे।
बहुत शुक्रिया हसन, और अल्लाह ताला ने हर एक एक चीज़ के अंदर जो भी चीज़ बनाई है उसमें कोई ना कोई उसके फ़वाद हैं। बहरहाल हमें जो है इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत होती है। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, और हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, और क्या तरीके हैं इस पानी को साफ़ करने के?
कुछ तरीके ऐसे हैं जो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई अज्जा मिलाते हैं पानी में, और उनका बेसिकली मकसद ये होता है कि जरासीम को साफ़ कर दें।
सही है।
ये कीमियाई जो अज्जा हम पानी में मिलाए जाते हैं उनसे उनके ज़रिए हम जो ज़रात हैं, जो फिज़िकल ज़रात हैं, उनसे नहीं बच सकते।
ठीक है।
तो जैसे पहले ही जैसे मैंने हमारे अपने घर की मिसाल दी कि दो तीन तरीक़ों को, मुख्तलिफ तरीक़ों को मिला के एक बेसिकली जब पानी इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे तरीक़ों के फ़वाद हम ले सकते हैं।
ठीक है।
एक और तरीका जो अमूमन घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होता है वो है पिटकरी का मिलाना।
ठीक।
तो ये बेसिकली उसी जगह पे हम उसको कह सकते हैं कि ये भी एक तरीका के कीमियाई है, और इसमें हम पानी को अगर मिलाया जाए इसमें एक बहुत ही छोटी सी मकदार पिटकरी की किसी कपड़े के ज़रिए एक दफ़ा आप उसको चक्कर दे दें
ठीक है,
तो काफ़ी रहती है।
यानी ये खुद कर सकते हैं हम लोग, जरूरत
घरों में कर सकते हैं,
कर सकते हैं,
और कमर्शियली भी अवेलेबल है मुख्तलिफ दुकानों में पानी के इसमें साफ़ करने के तरीके, जो कीमियाई केमिकल्स होते हैं वो मिलते हैं।
सही है।
कुछ लिक्विड की शक्ल के होते हैं, कुछ पाउडर की शक्ल के होते हैं, और उनका जो इस्तेमाल करना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें कुछ खास स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए,
करना जो है बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है।
बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गुफ्तगू सेगमेंट का। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुफीद नुकात के ऊपर आपने जो है इशारा किया, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन जो है इस पानी का जो मसला है इसको जो है संजीदा लें, और इसको जो है किसी न किसी, जो आपने जो सारे तरीके बताए बड़े आसान और बड़े सस्ते
घरों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप जो स्टूडियो में हमारे तशरीफ लेके।
जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। एक हमारे साथियों ने एक क्लिप तैयार किया है कज़वीन शहर के बारे में, फोटो क्लिप है, और इसमें ख़ास चीज़ ये है कि कज़वीन शहर एक ज़माने में ईरान का दारुल हुकूमत रह चुका है, बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए सफ़वी दौरे हुकूमत में। बहुत ही खूबसूरत शहर है, अगर वक्त हो आपके पास तो यकीनन ये क्लिप देखने के बाद आप लोग ज़रूर इरादा करेंगे इस शहर में जाने। 7:11 तकरीबन 12 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक, और हम लोगों का रबता हो गया है दिल्ली स्टूडियो से जहाँ पे डॉक्टर अतिया निशात मौजूद हैं। तो अगर हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे ख्याल में रबता हो गया है, नहीं हुआ है, पता नहीं चल
रहा।
डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ पूछनी थी, एक चीज़ तो नहीं काफ़ी चीज़ें पूछनी है मोटापे के बारे में। एक काफ़ी दिन पहले एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था किसी साहब का, पंजाब के इलाके का था, और यानी वाकया उस इलाके का था, और उसमें लिखा था कि अगर अलग से उन्होंने खाने पर खूब सारा तेल डाला और कहा कि तुम्हारा अगर पेट बड़ा नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम अमीर हो। तो ये वज़न का बढ़ना जो है ये हमारे गुर्बत या हमारे अमीर होने की निशानदेही कर सकता है, और किस हद तक मुफीद है?
ये बहुत ही अहम नुक्ता उठाया आपने हसन भाई। ये अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और मैं जब उनसे कहती हूँ कि भाई आपका वज़न बढ़ा हुआ है, आप इसको कम कीजिए, बहुत ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए, तो कहते हैं कि जी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे फादर भी ऐसे ही मोटे थे, दादा भी ऐसे ही मोटे थे, हम पतले हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई खाने को नहीं है क्या घर में। वैसे अब जहां तक लोगों के बीच में जानकारी बढ़ रही है, उन्हें इतनी समझ आ रही है कि इस चीज़ को अब थोड़ा फिल्मी असर भी हो गया है कि जैसे फिल्मी हीरो बहुत पतले दुबले होते हैं, मॉडल्स बहुत पतले दुबले होते हैं, तो अब लोगों में ये चीज़ आ रही है कि नहीं भाई पेट बाहर निकला होना बहुत अच्छी बात नहीं है, तो इस चीज के लिए लोग अब अलर्ट हो रहे हैं, अब वो चाह नहीं रहे कि वजन बढ़े। लेकिन परेशानी ये है कि इसके बावजूद जैसे कि आपने कहा कि वो खूब तेल डाल के खा रहे हैं, जैसे बहुत से लोग नहीं भी खा रहे हैं, जैसे बहुत से लोग चाह रहे हैं कि वजन कम हो, फिर भी देखने में आता है कि वजन है कि वो बढ़ते ही जा रहा है। आजकल का जो भी माशरा है, हर तीसरा इंसान मोटापे का शिकार है। अभी WHO की रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले 2012 की, कि दुनिया में जिस कदर मोटापा अभी है इस दौरान इतना मोटापा कभी भी नहीं रहा था। तो सवाल ये है कि अचानक ये मोटापा इस कदर बढ़ कैसे गया है बजाय घटने के, क्योंकि लोगों में अब पहले के मुकाबले ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, उनको समझ आ गया है कि मोटापा कम है। तो देखिए इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं कि मोटापा आखिर बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहली वजह जिसके तरफ हम अक्सर अपने एपिसोड्स में इशारा करते रहे हैं वो है लाइफस्टाइल। یعنی طرز زندگی وہ اب اس میں بالکل ایکٹیویٹی کم ہو چکی ہے. ہم ہیں کار میں آفس آ جاتے ہیں, لفٹ سے اپنے آفس پہنچ جاتے ہیں اور پھر سارا دن چیئر پہ مطلب کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہ کے برابر رہ گئی ہے, پہلی بات. دوسری بات, بیٹھے بیٹھے اب جیسے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں یا میٹنگ میں یا کہیں بھی, ہر جگہ کبھی چائے آ رہی ہے کبھی بسکٹ, اور وہ منہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا, وہ کھاتے رہتے ہیں. اور تیسری بات جو بہت خاص ہے وہ ہے سٹریس, یا سٹریس سے بھی بڑھ کر ایک چیز اب تو بلکہ بچوں میں بھی آ رہی ہے, ڈپریشن. یعنی اتنی ہم ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہمارا نظام ہے مطلب ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اور جو ہم جس طریقے سے کھانے کو ہضم کرتے ہیں اس کے اوپر بہت ہی زیادہ گہرا اثر پڑ رہا ہے. اس کی دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے طور پہ ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں, مطلب کبھی میٹھا بہت لوگ کھانے لگ جاتے ہیں پریشانی میں, یا بہت سے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں ریسٹورینٹس وغیرہ میں اور خوب سارا کھانا کھاتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کا بی ایم آر کہتے ہیں جس کو, بیسل میٹابولک ریٹ, یعنی آپ بیٹھے بیٹھے بغیر کچھ کرتے ہوئے جس قدر اپنی کیلریز یعنی انرجی صرف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اس کا ریٹ قدرے کم ہو جاتا ہے. مطلب جیسے اگر آپ بیٹھے بیٹھے 100 کیلری خرچ کر رہے ہیں تو اگر آپ سٹریس میں ہیں, ڈپریشن میں ہیں, پریشانی میں ہیں تو شاید آپ 50 ہی کریں گے, کیونکہ آپ مینٹلی طور پہ اس سے کوآرڈینیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے نظام سے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے آج کل موٹاپا بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے.
صحیح ڈاکٹر اتنی شاد, گفتگو کو ہم لوگ جاری رکھیں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا اگر آپ اجازت دیں تو وقفہ ہم نے لینا ہے, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, بات کو آگے چلائیں گے.
جی ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی, اور 7:17 ہو رہے ہیں, تقریباً 5 منٹ اور ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے. چلتے ہیں فوراً دہلی اسٹوڈیو ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحبہ کے پاس. اور خرم بھائی, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟
جی میرے خیال میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کو ان کی جو گفتگو آگے چل رہی ہے اس کو چلا دیا جائے تو بہتر رہے گا, کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. جی ڈاکٹر صاحب,
جی ابھی ہم اس پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ موٹاپا بڑھ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو موٹاپا بڑھ رہا ہے تو اس کو قابو کیسے کیا جائے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ موٹاپا ان کا بڑھ رہا ہے, یا وہ اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں. جیسے میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہوں, صبح اکثر تو میں بریک فاسٹ بھی نہیں کرتا ہوں, یا دن میں بھی کچھ نہیں کھایا, رات میں بغیر کھائے بھی سو رہا ہوں, پھر بھی میرا وزن بڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کچھ نہیں کھاتے. دیکھیے, اب آپ بغیر ناشتہ کی آفس پہنچ گئے, وہاں کسی نے آپ کو, آج کل تو یہ ان سب کا بھی بڑا رواج ہے, بیگ میں ایک ڈونٹ ڈال لیا یا ایک کچھ سینڈوچ برگر وغیرہ کچھ ڈال لیا اور جا کے کھا رہے ہیں. اب دیکھیے, اگر آپ گھر سے کھانا کھا کے جائیں گے, مان لیجیے 2 چپاتی اور ایک سبزی بھی کھا کے جائیں, تو آپ کو اس سے جو کیلریز جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی کرنسی آپ سمجھ لیجئے, اس کا سکہ سمجھ لیجئے, تو ہارڈلی آپ کو بمشکل تمام 200 یا 250 کلو کیلری انرجی ملے گی, جو کہ آپ کے 10-11 بجے تک کے لیے بھرپور ہے, سفیشینٹ ہے. اب وہ آپ نے نہیں لی, آپ آفس گئے, وہاں بھوکے ہیں, وہاں آپ نے جو ڈونٹ یا جو کچھ بھی آپ نے کھایا اس میں کم سے کم 600 سے 700 کلو کیلری مل گئی. آپ کے حساب سے آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں اور آپ نے بے حد کھا بھی لیا. تو ایک تو یہ پریشانی ہے. دوسری پریشانی ہے کہ کبھی کبھی آج کل کچھ ایسی بیماریاں ہیں, جیسے تھائرائڈ بہت عام ہو گئی ہے پانی کی وجہ سے اور لائف سٹائل کی وجہ سے, طرز زندگی کی وجہ سے تھائرائڈ کی پریشانی بہت عام ہو گئی ہے. اس سے ہمارا بی ایم آر یعنی جو تھائروکسین ہارمون ہے جو بی ایم آر کو کنٹرول کرتا ہے وہ قدرے کم ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی موٹاپا بڑھ رہا ہے. تو مجموعی طور پہ یہ کہنا ہے کہ دونوں چیزیں, کہ اپنا سب سے پہلے تو اپنا ایک میڈیکل چیک اپ کرائیے کہ بھائی موٹاپا کیوں بڑھ رہا ہے, اور دوسرے اپنے غذا کی طرف, مطلب جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں اس پہ ایک مانیٹرنگ ہے. وقت بہت کم ہے, اس پہ بہت سارے پہلو ہیں جس کو ہم انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں آگے بڑھائیں گے. بل اس وقت میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان دونوں پہلوؤں پر اگر غور کریں تو کافی اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے موٹاپے پہ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت ہی مفید گفتگو رہی, انشاءاللہ ضرور ہم لوگ اس موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اگلے ہفتوں میں. اور یہ جو ہے ہم لوگوں کے بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل یہی صحیح طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم پانی بھی پیتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں موٹے ہو جاتے ہیں
بالکل.
باقی پانی کے ساتھ کیا کیا کھاتے ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے, وہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا.
البتہ ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کی کہ وہ جو بیسل میٹابولک ریٹ ہے, ये कुछ लोगों में, क्योंकि थायराइड की बुनियाद पर कुछ लोगों में ज्यादा होता है, कुछ लोगों में कम होता है, तो इसकी वजह से भी बहरहाल जो है
क्योंकि
मुख्तलिफ
ना,
मुश्किल
तो
पेश आती
उसमें
है।
सबसे पहले वही करना चाहिए कि हम लोगों को जाके टेस्ट देना
न्यूट्रिशन
चाहिए
पर
कि क्या है।
डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम को। इंशाल्लाह जो है अगले जुमरात को भी जो है डॉक्टर साहिबा को हम जहमत देंगे ताकि वो
इंशाल्लाह
दोबारा आके गुफ्तगू कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
एक चीज़ हम बताना चाहेंगे अगले हफ्ते के मौजू के बारे में। हम लोग जो चला रहे हैं हम लोग हफ्ते का मौजू,
सही
वो इसके बारे में बुरी आदतों को छोड़ना।
जी,
तो अगले
और
हफ्ते हम लोग किस चीज़ के बारे में बात
हसन
करेंगे?
बड़ा जो है बड़ा अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है कि हमने ये जो हफ्ते का मौजू चलाया है कि बुरी आदत से बचा जा सके, इसमें जो है हम खुदगर्जी के बारे में बात करेंगे जो लोगों में पाई जाती है, उससे कैसे जो है छुटकारा पाया जाए। और बहरहाल इंशाल्लाह जो है ये बड़ा मेरे ख्याल में जो दिलचस्प
बहुत
मौजू
यहाँ
रहेगा
दिलचस्प मौजू रहेगा,
और उसके
इसको अब तक हम लोगों ने कभी भी
डिस्कस नहीं किया
हाँ,
बिल्कुल,
बिल्कुल।
ये जो है इसके
तो इसके
इंशाल्लाह
बारे में इंशाल्लाह आप लोग भी अपने ख्यालात का यानी इजहार करिएगा। बहुत ही प्लेटफॉर्म आपके हाथ में, हम
जी
लोग बस यहाँ पे हैं ताकि आपकी बातों को सही तौर से मुनज़्जम कर सकें बस, और हम लोग की कोई
यही मैं
जिम्मेदारी
यही
नहीं
कहना
है
चाह
यहाँ
रहा था
पर।
कि जितना आप लोगों की बातें प्रोग्राम में आएंगी उतना ही जो है भारत प्रोग्राम जो है दिलचस्प और
बिल्कुल
मज़ेदार बन जाता है।
यकीनन। और इसमें अभी मैं पढ़ना चाहूँगा, सैयद कर्रार हाशमी साहब ने एक और चीज़
जी
भेजी है
सही
और बहरहाल थोड़ा उन्होंने देर में पूछा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लोग ज़रूर पूछना चाहेंगे डॉक्टर रतिया निषाद साहिबा से। उन्होंने एक सवाल इसी के बारे में पूछा है। तो खुर्रम एक चीज़ मैं
जी
ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये है कि हम लोगों से रबते के लिए बेहतरीन रास्ता फेसबुक है,
सही
बहुत सस्ता रास्ता है बनिस्बत, और टेलीफोन के ज़रिए भी अगर हम आपकी आवाज़ सुनेंगे तो यकीनन हम लोगों को बहुत खुशी होगी। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं या प्राइवेट मैसेज की सूरत में फेसबुक या यूट्यूब पे डाल सकते हैं।
अच्छा हसन, हफ्ते के दिन का एक बड़ा जो है ज़बरदस्त किस्म का हमने मौजू रखा है और वो ये है कि नौजवानों में जो है बड़ा बेरोज़गारी जो है जैसे आपको पता है बढ़ती चली जा रही है,
बिल्कुल
उसके हल के बारे में, या के बजाय इसके कि जो है बुरी तरफ बुरे रास्ते की तरफ चला जाया जाए, क्या और काम किए जा सकते हैं, नौजवान क्या कर सकते हैं। डॉक्टर जाफर रजी खान जो है हफ्ते के दिन इस मौजू पर भी इंशाल्लाह हमारे साथ
बहुत ही
बात
ज़बरदस्त
करेंगे।
मौजू है, तो सनीचर के दिन हफ्ते के दिन हम लोगों का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और अगले हफ्ते हम आपके कॉल्स के और आपके मैसेजेस के भी मुंतज़िर रहेंगे। वैसे आज भी अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें और खुर्रम को इजाज़त दीजिए।